नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकी ICET पर दोनों देशों की पहल के बारे में कल नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली रेटिंग एजेंसी फिज ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। वैश्विक ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को फिल्म में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवार प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सखी के रूप में स्व सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। प्रमाण पत्र वितरण का यह कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप है। श्री मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सम्मेलन में भाग लेंगे। वे कल बिहार के लिए रवाना होंगे। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने संबंधित पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकी ICET पर दोनों देशों की पहल के बारे में कल नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेब सुलिवन भी उपस्थित थे। बैठक में श्री डोभाल तथा श्री सुलिवन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में समझदारी को और आगे बढ़ाने पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। अमेरिका ने कहा है कि दोनों पक्षों ने सह उत्पादन, सह विकास और अनुसंधान तथा विकास के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बैठक में समान विचारधारा वाले देशों के साथ समन्वय बढ़ाकर प्राथमिकता वाले और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को व्यक्त की गई। अमेरिका और भारतीय नागरिकों तथा दुनिया भागीदारी के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय तथा लागत प्रतिस्पर्धा प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों पक्षों ने मार्च में सियोल में आयोजित अमेरिका भारत कोरिया द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी वार्ता की उद्घाटन बैठक और क्वाड में के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ जारी सहयोग का स्वागत किया। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा टूलकिट को अपनाने के महत्व को भी रेखांकित किया है। कुछ देशों में संवेदनशील तथा दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने का संकल्प लिया। श्री सुलिवन और श्री डोभाल ने इस बैठक के अलावा एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया, जिसमें दोनों देशों के कुछ प्रमुख उद्योगपति और विचारक शामिल हुए। इस पहल के माध्यम से अमेरिका और भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश तथा साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सरकारों, उद्योग तथा शिक्षा जगत के बीच बेहतर तरीके से कार्य करने का संकल्प लिया। देशों को आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश में वृद्धि को देखते हुए पहले के अनुमान में संशोधन किया गया है। रेटिंग एजेंसी ने आज जारी अपनी वैश्विक आर्थिक आकलन रिपोर्ट में 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि दर अनुमान को भी 2.4% से बढ़ाकर 2.6% किया है। रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना बढ़ी है। चीन को छोड़कर विश्व के उभरते बाजारों में घरेलू मांग में तेजी का रुख देखा जा रहा है। वैश्विक ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। बाल सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद गणात्रा ने 400 से अधिक वृत्त चित्र का निर्देशन और संपादन किया है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए 25 बहुभाषी टीवी कार्यक्रम भी बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस वर्ष का विषय व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में लाखों लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से समुदायों पर योग के गहरे प्रभाव का पता चलता है। इस अवसर पर श्री यादव ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में एक सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने योग पर प्रोफेसर आयुष्मान कार्मिक का लोकार्पण भी किया। यह पुस्तक बच्चों को रुचि और मनोरंजन के साथ योग सीखने और अभ्यास करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में कहा है कि पंचायत परिसर, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर योग आधारित कार्यक्रम का आयोजन लोगों और विशेषकर युवाओं को अस्थायी और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने इस आयोजन को योग के वैश्विक प्रभाव और लोगों के जीवन पर इसके सकारात्मक असर का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि योग देश की प्राचीन संस्कृति का एक उपहार है जो समग्र स्वास्थ्य में सहायक है। योग का अभ्यास शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज यानी श्री अन्न शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार वर्षा जारी है। मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई अंदरूनी इलाकों में सड़कें बाधित होने की खबर है। पापुमपारे जिले के द्विमुख इलाके में यातायात बाधित होने के कारण सवेरे से यात्री फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे और कुरुंगकमे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में राज्य में भारी वर्षा होने का संभावना व्यक्त किया है। साथ ही अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आंधी आने से गर्मी कम होने की संभावना है। इस बीच डॉ राय ने कहा कि अगले 2-3 दिन पश्चिम बंगाल के उप हिमालय और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।